ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज रामनवमी है, भगवान राम का हम लोग गुणगान करेंगे। एक कितने में ये कोई प्रश्न प्रश्न। तो आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस्कॉन के द्वारा पूरे दुनिया में ये रामनवमी महामहोत्सव मनाया जा रहा है। भागवत में भी नवम स्कंद में भगवान के बारे में बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया गया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बोला था कि आप भगवान राम के बारे में बहुत सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझा सुनाते हैं। इसमें बताया गया है कि खडवांग दृग बाहुश्च रघुस्त तो उत्सव अजस्त तो महाराज दशरथो अभवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घवाह हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराजा रघु है, महाराजा रघु से अस उत्पन्न हुए और अस से महापुरुष महाराजा दशरथ उत्पन्न हुए। तो महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और महाराज दशरथ के बारे में ही बताया गया है कि वे जैसे महाराज रघु महाराज दलीप बहुत पूरा वंशालु की चले जा रहे हैं, महाराज ये सब बड़े ही प्रभावशाली और राजा थे और महाराज रघु भी बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। उसी तरह से महाराज दशरथ भी बहुत ही प्रभावशाली राजा थे और इनको अतिरथी कहा जाता था, अर्थात बहुत बहादुर से युद्ध करते थे, युद्ध कला में पारंगत थे। इसीलिए कभी कभी जब दिवासु संग्राम का युद्ध होता था तो महाराज दशरथ को बुलाया जाता था, वो देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे असुरों के विरुद्ध। तो इस तरह से महाराज दशरथ जो राज कर रहे थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता। तो इनके महाराज दशरथ के बड़े परम मित्र थे रोमपाद जी, तो रोमपाद जी को उन्होंने गोद में दे दिया था। तो जो शांता थी इनकी पुत्री महाराज दशरथ की, वो रोमपाद के पास चले गए थे। इनके पास कोई संतान नहीं थे। तो महाराज दशरथ बहुत ही चिंतित थे, उनको संतान नहीं थे। तो सबसे ज्यादा कष्ट था उस समय रावण के अत्याचार से। वास्तव में रावण का जो अत्याचार बढ़ा, जिसके डर से देवता गंधर्व किन्नर और पृथ्वी पर मनुष्य ऋषि मुनि सब परेशान थे। सबकी परेशानी थी कि रावण सबको पराजित कर रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पराजित करके और उनकी स्त्रियों को या उनकी पुत्रियों को अपने लंका में रखा हुआ था। इस तरह से जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब सारे देवता मिल करके भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम देवताओं की रक्षा करने के लिए आप आइए। तो आकाशवाणी हुई कि हम महाराज दशरथ के यहाँ आएंगे और हमारा माता होंगी कौशल्या, हम चतुर्व्यूह अपने दिव्यांश के साथ अवतरित होंगे और आप लोग भी जितने हैं सब वानर भालू के रूप में पूरे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक भूमिका बंधी और भगवान राम जो है निश्चित कर लिया कि हमको प्रकट होना है अयोध्या में। इधर महाराज दशरथ चिंतित थे तो उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसको बोलते पुत्रेष्ट यज्ञ, और पुत्रेष्ट यज्ञ में ऋषि सिंगी मुनि जो थे वही आए थे और वो महाराज दशरथ के दामाद ही थे क्या उन्हीं की बेटी की शादी ऋषि सिंगी मुनि के साथ हुई थी, शांता की शादी उनके साथ ही हुई थी। तो उनकी पुत्री और दामाद जब आए थे अयोध्या में तो उन्होंने ये यज्ञ कराया था। तो जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और यज्ञ का जब समापन हो रहा था पूर्णा होती उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और एक सोने के परात में खीर लेकर के महाराज दशरथ को थमाया और महाराज दशरथ ने वो खीर कौशल्या को खिलाया, सुमित्रा को दिया, फिर कैकेयी को दिया, लेकिन सुमित्रा को दो बार मिला, जो थोड़ा सा बचा हुआ था दोबारा सुमित्रा को दे दिया, इसलिए उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। तो महाराज जब आज ही के दिन चैत्र शुक्ल की जो राम नवमी आती तिथि आज की ही तिथि के दिन भगवान राम प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए अपने चतुर्व्यूह अंश के साथ अर्थात राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सब उत्पन्न हुए तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान अपनी कुछ बाल लीलाएं शुरू की। वास्तव रामायण बहुत बड़ी 24,000 श्लोकों में राम का गुणगान लिखा है, कितना 24,000, 30 मिनट में आप पूरा रामायण नहीं खत्म कर सकते है। अभी बड़े मंदिर में हमने राम कथा किया था, 2.5 घंटा टेली कथा सुना रहे थे, तब इस समय कम था है ना, 2.5 घंटा रोज हम कथा सुना रहे थे और 7 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो भगवान का हम एक दो प्रसंग लेंगे जिससे कि हमें कुछ शिक्षा मिलती है। देखिए भगवान प्रकट होते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमित दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। तो इसी तरह से ये भगवान चाहे कृष्ण के रूप में प्रकट हों चाहे राम के रूप में प्रकट होते हैं अपनी दिव्यता मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्होंने जब वचन दे दिया है गीता में है ना कि हमारा जन्म कर्म दिव्य होता है, तो कोई भी अवतार लेते हैं तो उनका हर कार्य क्या होता है दिव्य होता है। किसी भी अवतार में आप देख लीजिए उनका हर अवतार क्या होता है दिव्य होता है और उनकी जो लीलाएँ होती हैं वो क्या होती हैं दिव्य होती हैं। देखिए अभी एक अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी, राइट, उन्होंने एक बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया था, पता है ना आप, ये सब जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं भगवान के बारे में और भगवान तुलना इंसान से कर देते हैं ये क्या है अज्ञानता के चलते होते हैं या जानबूझ करके फेमस होने के लिए मीडिया अटेंशन के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, वास्तव में इसलिए होता है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की जो रासलीला है गोपियों के साथ उसकी तुलना आजकल के लड़कों से लड़कियों से कर दिया था, एक गलत है कि नहीं गलत, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने टेलीविजन देखा होगा हमने इसका बहुत जोरदार खंडन किया था, उनका ये तो बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय बयान है, इसकी जितना निंदा करना चाहिए क्योंकि ये शोभा नहीं देता लोहे की तुलना आप सोने से नहीं कर सकते। जानते किसका स्टेटमेंट? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बोला है बात। आप लोग कोई अगर ऐसा कहता है तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि लोहे की तुलना सोने से आप नहीं कर सकते। देखने में तो दोनों क्या है, धातु है। लोहा भी एक धातु होता है और सोना भी एक धातु होता है। अंतर किस में होता है? गुणों में अंतर होता है, क्वालिटी में अंतर होता है। तो भगवान और इंसान में वही अंतर है जो लोहे में और सोने होता है। मैंने यही कोटेशन मीडिया वालों को दिया था, लोहे की तुलना आप सोने से नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान राम भी जब इस पृथ्वी पर आए तो इस जबकि वो मनुष्य के रूप में बहुत साधारण मनुष्य का रोल उन्होंने अदा किया है, बहुत ही साधारण मनुष्य का। इसलिए कि ताकि हम मनुष्य हैं ना, तो हम कैसे सीखें कि हमारा स्टार्टअप कैसे होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बचपन से ही एक अपनी दिनचर्या सेटअप कर लिया था। ऐसी शिक्षा हमारे सबके लिए है। भगवान सुबह उठकर जानते क्या करते थे? मात पिता गुरु नाई माता। भगवान सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को, कौशल्या की, सुमित्रा की, कैकेयी की और महाराज दशरथ की क्या करते थे? चरण छूते थे। उनका नियम था, सुबह उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे और गुरु वशिष्ठ और जो महान रहते सबको प्रणाम करते थे। अपनी दिनचर्या उन्होंने इस तरह से बना रखे थे। तो ये शिक्षा दिया है भगवान, स्टार्टिंग इसी की है कि हमें घर में किस तरह से जब सुबह उठते हैं तो अपने पृथ्वी माता को प्रणाम करें, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अगर गुरु हैं तो गुरु को प्रणाम करें, उसके आगे की दिनचर्या शुरू होती है। तो भगवान से ये हम सबको शिक्षा लेना चाहिए कि अपने घर में अगर हम अपने माता पिता को रखे हैं, आजकल तो रखने का प्रचलन नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, अपने माता पिता को रखना भी नहीं चाहते है ना, ओल्ड एज होम देखते हैं है ना, वृद्धाश्रम खोजते रहते हैं, लेकिन हमें अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहिए। जो अपने माता पिता को नहीं रख सकता वो क्या कर सकता है, आप सोचिए है ना, आप खुद सोचिए, क्योंकि ये माता पिता ही आपको इस दुनिया में लाते हैं। इस दुनिया में कौन लाता है? माता और पिता ही इस संसार में लाते हैं। तो इस दुनिया को दिखाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। उन्हीं माता पिता को हम जब दुनिया को घुमाने के लायक हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। दुनिया कितने विचित्र है। भगवान राम ने शिक्षा ले ली, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी आए तो अपने माता पिता के लिए आए, उनको जेल से छुड़ाए, अपने नाना को छुड़ाए जेल से, राइट। उग्रसेन जी महाराज कंस को मार करके अपने नाना को फिर राजा बनाया, भगवान ने किया। उनके माता पिता जेल में थे, उनको छुड़ाया। भगवान कहते हैं ये हमारा माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, कुंती हमारी बुआ जी हैं, वो सारा रिश्ता रखते हैं। हम तीस मार खापना समझते हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं। भगवान राम ने रिश्ता रखे हैं, आप सोचिए इस बात, क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित है। ये जितनी लड़ाई लड़ाई गई है, भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आया तो सब रिश्ता जोड़े, आप समझे नहीं। तो हमें इस संसार में आना है तो रिश्ता तो हम बनाते हैं, लेकिन इन रिश्ते के बीच में रख करके हमें कैसी भक्ति करनी है, एक कला हमको सिखाते हैं भगवान है। अर्जुन भी भगवान के रिश्ते में थे। भगवान क्या लगते थे बताइए, कृष्ण भगवान क्या लगते थे? अर्जुन का भगवान से क्या रिश्ता था? अरे भैया, अर्जुन को अपनी बहन से शादी करवाई थी, जीजा लगते थे कृष्ण, सच है नहीं? आप बलदेव सुभद्रा कहते ना, तो सुभद्रा जी कौन है? भगवान कृष्ण की बहन है। और भगवान शादी करा दी थी अर्जुन से, कहा भगा ले जाओ, शादी करो, भगा के शादी करो। ये रिश्ते हमें अपने रिश्तों से घबराना नहीं चाहिए। तुम दमदार हो तो रिश्ता भी निभाओ और भगवान की भक्ति भी करो, है ना। ये बहुत ही काम है। संसार से भागने से आप भक्त नहीं बनते संसार में रह करके। श्री प्रभुपाद जी ने जंगल में मंदिर नहीं बनाया, डट करके एकदम बीच जहाँ सब ज्यादा पब्लिक हो वहीं मंदिर बनाना है। किसके लिए? तभी तो भक्त बनेंगे। चारों आसन जिस आसन में रहे उसी आसन में कर क्या करो, भक्ति करो। लक्ष्य भक्ति होना चाहिए, यही गीता भगवान ने समझाया। अर्जुन का बेटा तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, तो जो करो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, भाग जाऊंगा, नहीं तुम्हें युद्ध तो करना ही करना है, लेकिन तुम्हें युद्ध भी करना है और साथ साथ मेरा ध्यान भी करना है। तुम्हें मेरा ध्यान भी करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा भगवान देते हैं कि हमें कर्म तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ भगवान का क्या करना है, चिंतन भी करना है भगवान के नाम का। तो ये बड़ी शिक्षा भगवान राम ने कृष्ण ने हमसे कि इस संसार में आए हैं तो जीने की कला हमें सीखनी चाहिए। तो भगवान जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए, भगवान जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान तो राज चाहते थे तो हम भी राज चाहेंगे, गलत है। कि भगवान के राज में इंसान के राज में क्या है, अंतर है, कि इंसान ही में अंतर है। क्योंकि भगवान का जो प्रेम है वो विशुद्ध होता है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाए हैं कि भगवान की जो लीला होती है वो योग माया के अंदर चलती है, और जो यहाँ पर जो सांसारिक लीला करते हैं आप सब इंसान करता है वो महामाया के अंदर होती है। ये अंतर है, ये प्रभुपाद समझाए है। तो यहाँ की जो लीला है वो लव नहीं होता, वो क्या होता है, लस्ट होता है। तो लष्टी लोग ऐसा घूमता है, इसलिए महामाया और योग माया में जमीन आसमान का अंतर है। तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं योग माया के अंतर्गत आती हैं, इंसान जो करता है वो माया के अंतर्गत आता है, ये बड़ा अंतर है, इसलिए आप तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि अपने माता पिता को क्या करते थे, सम्मान देते थे और उनके वचन को पूरा करते थे। यहाँ तो भगवान राम के बारे में बताया गया है कि वे बिना आज्ञा के कोई कार्य करते भी नहीं थे। कोई भी कार्य हो, जैसे एक दृश्य आता है, आप लोगों ने सीता स्वयंवर का दृश्य मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको पता चले। अब बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, किसकी, धनुष यज्ञ की। पूरे पृथ्वी से बड़े बड़े राजा आए हुए थे, तो विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर के, क्योंकि विश्वामित्र जी बहुत परेशान थे, यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, तो वे राम और लक्ष्मण को सिर्फ 10 दिन के लिए मांगा था। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए मांगा था। और उस 10 दिन के अंदर जो है कि मैं अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार करने के बाद फिर जो है महाराज जनक के सभा में आते हैं। अब देखिए पूरी सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, तो सब पहले से इकट्ठे हुए थे, और महाराजा जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना और बाकी सखियां सीता जी की, ये सब लोग बैठे थे धनुष यज्ञ सभा में। सब अलग अलग अपने अपने स्थान पर, सबका सेलेक्टिव स्थान से बैठे थे। और उसी समय भगवान राम लक्ष्मण किसके साथ, विश्वामित्र के साथ एंट्री की, अर्थात उस सभा में प्रवेश किए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही भगवान आए तो जितने भी राजा महाराजा सब बैठे हुए थे वो सब क्या हो गए, निस्तेज हो गए। और सबकी नज़र किस पर पड़ी, भगवान एक कौन से आ गए। क्योंकि आजकल आज तक जितने भी राजा महाराजा थे इतने सुंदर स्वरूप देखा ही नहीं था। अब भगवान के से जो आभा निकल रही थी उनके सामने सब क्या हो गए, फीके पड़ गए सबकी निगाह। और सीता जी तो भगवान राम से पहले मिल लिया था, पता है ना, जब फूल चुनने के लिए गई थी पहली मुलाकात, कहते ना फर्स्ट मीटिंग, जब पहली बार नयन मिले थे, ये बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वास्तव में जनक फुलवारी में भगवान जब फूल चुनने के लिए गए थे तो सखिया के साथ सीता जी भी गई थी, तो जब पहली बार उनके नयन मिले थे तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया कि दोनों अपलक हो गए थे। जो पलके हुई थी वो गिरना भूल गई, पलक शब्द पलके गिरती है, तो जब दोनों के नयन मिले सीता जी के और राम के तो अपलक माने देखते ही रह गए, एक शब्द बोल नहीं सकते थे, अब पलके गिरती नहीं थी, पलके गिरना क्या हो गई, भूल गई थी। बड़ा सुंदर मनुष्य। तो उसी समय सीता जी ने ठान लिया था कि मुझे शादी करनी है तो इनके साथ होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही अपने पिताजी की प्रतिज्ञा जो धनुष तोड़ेगा वही करेगा वो आने आ, इसलिए सीता जी दुखी थी कि बड़े बड़े रावण रावण बाणा से बहुत से बड़े बड़े पहलवान आए और धनुष को तोड़ नहीं पाए थे, इतना सुंदर छोटा राजकुमार इतना नाजुक है ये कैसे तोड़ पाएगा, उनको ये सोचते ही थे कैसे तोड़ पाएगा। इसलिए वो बैठी तो थी लेकिन जब भगवान को देखा कि अब आ रहे हैं तो वो बहुत प्रार्थना करने लगी, शंकर जी से पार्वती जी गौरी की पूजा करती थी ना कि सब यही धनुष तोड़े ये बात। तो भगवान जब आए तो कोई धनुष तोड़ नहीं पाया था, तब जो उनके मंत्री थे शतानंद महाराज जनक के, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं होते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए क्योंकि हमारे रहते हुए हमारे बड़े भाई राम के रहते हुए ये बात कही क्यों कि पृथ्वी वीरों से खाली है, कि एक धनु को हम तो एक चुटकी में से उठा करके अब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके तो मसल सकता है। ऐसा बोला तब ठंडे हुए। तब विश्वामित्र जो है अच्छा जब शुभगणी देखी तब उन्होंने राम से कहते बेटा राम उठो और महाराज जनक का जो कष्ट है दूर करो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। अब देखिए भगवान राम जब धनुष की ओर चलते हैं तो उनकी जो चाल है एक हाथी की चाल जैसी हो, जैसे हाथी मस्ती में चलती है राइट, अगर आप हाथी देखो हाथी बहुत मस्ती में चलती है और उसके पीछे कौन भोगते हैं कुत्ते। तो प्रभुपाद जी ने कहावत बोल दी कि जब हमारे भक्त आते हैं जाते हैं कीर्तन करते हैं तो कुछ लोग भोगते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, हमारे भक्तों क्या करना चाहिए अपना काम बिल्कुल हाथी की चाल चलनी चाहिए। तब प्रभुपाद जी एक बहुत कहावत कही कि हाथी जाए बाजार कुत्ते भोंके हजार। हमें कोई फर्क नहीं सोचना चाहिए, हमें जो काम करना है करना है, लोग क्या कहेंगे भोंकते हैं इसे कोई लेना देना नहीं, हाथी जाए बाजार कुत्ते भोंके हजार, क्यों हाथी को असर नहीं पड़ता, वो क्या कर कब तक भोंकेंगे कुछ देर तक भूखे में फिर पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें घबराना चाहिए। तो भगवान हाथी की चाल से धनुष के पास पहुंच रहे और जैसे जैसे पहुंच रहे हैं धनुष के पास सीता जी की धड़कने तेज होती जा रही है, उनको परेशानी थी कि धनुष टूटेगी कि नहीं टूटेगी। भगवान जब धनुष के पास पहुंच जाते हैं तब भगवान क्या करते हैं राम कि एक नज़र लेफ्ट साइड से ऐसे एक नज़र ऐसे देखना शुरू किया सब पर ऐसे देख करके, और तब भगवान नज़र किस पर पड़ी सीता जी पर, और जब सीता जी पर नज़र पड़ी तब भगवान ने अपने मन में सोचा क्या सोचा, एक चौपाई बहुत फेमस है जो सब लोग कोट करते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाए तो पानी बरसने से क्या होगा, ये भगवान कहते हैं। अर्थात सीता जी को देख करके भगवान ही कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर खेती सूख जाए और फिर बारिश हो तो कोई फायदा नहीं है। तो सीता जी उसी तरह सूख रही थी जैसे बिना जल के खेती सूख रही थी, इतनी नर्वस होती चली जा रही थी। तो भगवान ने कहा कि अगर हम धनुष नहीं तोड़ेंगे इस समय तो सीता जी शरीर छोड़ सकती भी सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, तो फायदा क्या धनुष तोड़ने का। एक कहते भगवान राम सोचते हैं कि अगर सीता जी ही नहीं रहेगी जिसके लिए सुंदर रचा हुआ है तो धनुष तोड़ने से क्या फायदा। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसलिए जो करना है तुरंत करना है। तो भगवान ने देखा अब, लेकिन जो हम समझाना चाहते थे, भगवान ने सीता जी को देखा, मन में विचार किया कि अब हमें देर नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ने धनुष उठाने से ठीक पहले, चंद सेकंड पहले भगवान ने जानते क्या है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु विश्वामित्र को क्या किया, मन ही मन प्रणाम किया, मर्यादा नहीं भूली। ये हम आपको समझाना चाहते थे। देखो भगवान राम कोई भी काम करने से पहले अपने गुरु को क्या करते थे, याद करते थे। गुरु दूर में बैठे थे लेकिन फिर भी गुरु जी क्या किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही धनुष उठा करके तोड़ दिया। किसी को पता ही नहीं चला, लोग देखने पर जब आवाज हुई तब लोगों को जाएगी, इतनी तेजी से सब काम हुआ कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु को मन प्रणाम किया और धनुष उठाया, धनुष टूट गई। जब धनुष तो हमें इस छोटे से प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेना है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरु को क्या करना चाहिए, अवश्य याद करना चाहिए। तो हम लोग तो दीक्षा लिए हैं, हमारा तो कर्तव्य होता है जो भी काम करें अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ करके और तब कोई काम करना चाहिए। ये भगवान ने इस शिक्षा दी है, इससे पता चलता है बहुत। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि भगवान किस तरह से हर जगह मर्यादित ढंग से कार्य किया। और फिर जब सीता जी बड़ी खुश हो गई है ना, तो सखियों के साथ हार लेकर के आई है ना, बड़ा सुंदर दृश्य है। और जब भगवान खड़े हो गए है ना, तो सीता जी संकोच कर रही थी है ना, अब भगवान राम थोड़ा लंबे भी थे, सीता जी थोड़ा छोटी थी, तो जो सखियां थी, आप देखते हो गांव में भी गीत गाया जाता है ना, तो सखियां भी वहाँ गीत गाती, क्या गाती हैं कि झुक जइहो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा जब जयमाला कार्यक्रम होता है तो लड़के को झुकना पड़ता है, राइट। तो सखियां भी यही कहती है कि झुक जइहो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, खड़त खड़त मेरा पाँव दुखत है कि खड़े खड़े मेरे पाँव क्या दुखने लगे हैं। स्त्रियाँ वैसे नाजुक होती हैं लड़कियाँ, तो कहें कि इसलिए झुक जइहो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी है ना, तब भगवान सर ऐसे करते हैं और जयमाला डाल दिया जाता है। बड़े धूमधाम से प्रसन्नता थी, शादी हो गई, लेकिन एक तूफान आके खड़ा हो गया। वो तूफान कौन आया, परशुराम। परशुराम एक तूफान से कम नहीं थे, रंग में भंग डाल दिए। सब प्रसन्न ही थे कि परशुराम जी आ गए, जितने लोग प्रसन्न थे सब दुख से ग्रसित हो गए, सब डर गए कि वो 21 बार क्षत्रियों को मारा था, कितनी बार, 21 बार क्षत्रियों को मारा था, सब डर गए। अच्छा क्षत्रिय लोग थे ज्यादातर, सब सब डर गए। अब किसने धनुष तोड़ी, इसे पूरा लक्ष्मण जी से उनकी बड़ी तीखी बहस हुई, एक बहस का मैं चर्चा करूंगा, बस कहीं बहुत लंबा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी, मैं जब लड़का था, मैं बचपन में था, तब मैंने ऐसे कितने धनुष तोड़ दिए थे। ये सुना होगा आप लोगों ने प्रसंग कि जब मैं लड़का था, छोटा सा था, तब मैंने कितनी बहुत धनुष तुम्हें तोड़ी थी, हजारों धनुष तोड़ी थी, तब तो आप गुस्सा नहीं किए। और आज एक छोटे से पुरानी धनुष तुमने तोड़ दी, पुरानी थी पहले टूट गई, तो हे गोसाई, ब्राह्मण के रूप थे ना, कि हे गोसाई, हे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? एक घटना उन्होंने क्या किया, याद दिलाई। इस एक कथा में सुना हुआ कथा, इसका ये जो कथा, इसके पीछे एक कौन सा याद दिला रहे हैं? हुआ क्या कि जब 21 बार पृथ्वी से मारना शुरू कर दिया था, तो जितने बड़े बड़े राजाओं को मारते थे, क्षत्रिय राजाओं को, उनका धनुष बाण उठा लेते थे, अपन रख लेते थे, तो ऐसे हजारों हजारों धनुष जो है इकट्ठा करके रख दिए थे कहाँ, अपने आश्रम में। परशुराम जी हजारों हजारों धनुष जो है रख दिए थे, राजाओं महाराजाओं को मार मार कर उधम रखे थे। तो पृथ्वी माता और शेषनाथ जी, लक्ष्मण जी कौन है, स्वयं शेषनाग जी, शेषावतार स्वयं शेष जी है ना। तो इन्होंने एक प्लान किया, एक योजना बनाई। पृथ्वी माता ने कहा कि देखो ये इतनी जो खतरनाक धनुष रखी हुई है बाण है ना, अगर राक्षसों के हाथ में लग जाएंगे किसी दिन, तो पूरा तूफान खड़ा हो जाए, पूरा हाहाकार मच जाएगा, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो शेषनाग जी ने कहा ऐसा करो, आप माता बन जाओ और मैं आपका बेटा बन जाता हूँ, और उनके आश्रम में चलते हैं, एक दो दिन रहते हैं, उसके बाद मौका पाकर हम तोड़ देंगे, सारी तरह खराब कर देंगे। ऐसे हुआ तो पृथ्वी माता माता बन गई, और शेषनाग जी जो लक्ष्मण जी हैं वो छोटा सा बालक बन गए। अब पृथ्वी माता कहती है परशुराम जी से कि मैं कई आश्रम गई, लेकिन मेरे बेटे को किसी ने जो है शिष्य बनाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आप बड़े दयालु हैं। देखो ऐसे बोल रहे, दयालु वाला नहीं है, जब काम निकाला होता है तो हमें थोड़ा मीठा बोला होता है, किसी की तारीफ करनी होती है, कुछ लेना होता है तो लोग क्या करते, तारीफ करते हैं, नहीं नहीं। तो इस तरह से वो पृथ्वी तारीफ करे। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि पहचान नहीं पाए कि कौन है, क्योंकि वो लोग साधारण एक स्त्री के रूप में आई थी, क्योंकि ये मेरा बेटा है, और शेषनाग जी छोटा बालक बन के आए थे भेष बदल करके। तो कहे कि हमारा बेटा थोड़ा सा चंचल है, बड़ा नटखट है, तो एक वचन आप जरूर दीजिएगा कि अगर मान लो इस बच्चे से कोई गलती हो गई, गलती से कोई नुकसान हो गया, तो आप गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करेंगे। तो वो मान गए, ठीक है आपका बेटा अगर कुछ करेगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो लक्ष्मण जी मान वही बालक में, तो जैसे ही मौका मिला इनको, जैसे ही मौका मिला, परशुराम आश्रम हमेशा तो रहते नहीं थे, अपने आश्रम से जब बाहर गए परशुराम जी, तब इनको मौका अवसर मिल गया। तब क्या किया, बालक ने जितने धनुष वहाँ पे धनुषों का ढेर लगा हुआ था, उस सारे धनुष को क्या कर दिया, तोड़ करके खत्म कर दिया, नाश कर उसका। जब परशुराम जी वापस आए तो देखा, लेकिन चूंकि वचन दिया था गुस्सा नहीं किए। तो इसी घटना को लक्ष्मण जी उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि जाने से पहले, जब वो जाने से पहले जो बालक था वो अपना शेष अवतार दिखाया और बोल किया कि हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, पूरा दर्शन देख करके तब गए है ना। तो वही लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि बहुत धनी तोड़ी लड़का है, कि मैं जब लड़का था बच्चा था तो हमने बहुत सी धनुषें तोड़ी थी, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया था। तो एक घटना याद दिलाई, जब एक घटना याद दिलाई तब परशुराम जी थोड़ा क्या करे, समझे कि अच्छा है, और उसी से भगवान राम ने संभाल लिया। फिर भगवान राम ने उनको जब बात कही तब परशुराम समझ गए, अब परशुराम भगवान को पहचान गए, प्रणाम करके वो चले गए। तो इस लीला से भी हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमें अपनी मर्यादा को क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। परशुराम जी कितना चटके मटके, लेकिन भगवान राम बड़ी ही विनम्रता से और बड़ी ही मधुरता से क्या किए, बात की। तो हमें भी मधुरभाषी होना चाहिए, प्रियभाषी होना चाहिए। तो ये सारी शिक्षा भगवान राम से हमें क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर हमसे आपसे आजकल कोई बहस कर ले तो मारा मारी शुरू हो जाएगी, राइट। एक बात बोले तो हम 10 बात बोलेंगे, लेकिन भगवान राम से वही शिक्षा लेनी है कि अगला कितना भी क्रोध करे लेकिन भगवान अपनी विनम्रता से अपनी मधुरता से उसको क्या करते, ठंडा कर देते थे, चुप कर देते। तो ये शिक्षा है कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो साधु को अपनी साधुता नहीं छोड़ जाए। भगवान राम ने एक शिक्षा दी है, संत एक उत्तर कांड किसमें भगवान कहा कि संत की परिभाषा क्या है कि संत का जो है वो चंदन के समान होता है और जो असंत होता है उसकी तुलना कुल्हाड़ी से की है, दुष्ट की तुलना किससे की है, कुल्हाड़ी से, और जो संत होता है उसकी तुलना किससे की है, चंदन से। कि देखो चंदन को कौन काटता है, कुल्हाड़ी काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है अपनी खुशबू उस कुल्हाड़ी में भी क्या करती है, दे देती है, खुशबू दे देती है। बड़ा सुंदर ये भगवान राम ने समझा। भगवान राम ने कहा कि संत जो है इसी प्रकार से होता है कि संत अपनी संतई नहीं छोड़ता। जैसे आप मुझसे सुना होगा प्रसंग कि एक बार एक नदी के पास से एक संत महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस नदी की धारा में एक बिच्छू बहा जा रहा है, तो उस बिच्छू को बचाने के लिए वो बिच्छू को बार बार पकड़ रहे थे, है ना, और बिच्छू को डंक मार रहा था, लेकिन वो उसको किसी भी तरह से बचाना चाहते थे। तो एक दूसरा व्यक्ति देखा कि महात्मा जी आप क्यों उस बिच्छू को बचाने के चक्कर में पड़े हैं, आपको कितना डंक मार रहा है ना। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना संत अपनी संतताई क्यों छोड़ें, हमारा काम है उसको बचाना, वो अपना काम कर रहा है हम अपना काम। तो संत बनना इतना आसान नहीं है, गिरुआ बस पहने से कोई संत नहीं बनता है, टोपी लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता है, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, हमारा आचरण और व्यवहार क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। तो संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। तो भगवान राम बड़े ही मर्यादित ढंग से अपनी लीलाएं की। भगवान का एक छोटा सा प्रसंग और आता है, जब समुद्र के किनारे भगवान पहुंच जाते हैं तो विभीषण से सुग्रीव से सबसे राय लेते हैं कि मैं क्या करना चाहिए। तब विभीषण ने राय दिया कि ये जो सागर है आपका पूर्वज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पूर्वज जो थे महाराजा सागर उन्होंने इसको विस्तार कराया था, तो अगर आप इससे रास्ता मांगे तो शायद रास्ता दे दे। ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मण चाहते थे कि अभी बाण चला के और तुरंत रास्ता निकाल दिया जाए। भगवान राम ने क्या किया, बैठ गए समुद्र किनारे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। देखिए यही भगवान की क्या मर्यादा है, भगवान चाहते उसी वक्त कर सकते थे लेकिन नहीं, वो एक मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं। इस जो व्यक्ति बलवान होता है उसको इन सब चीजों क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान 3 दिन तक प्रार्थना की, 3 ही दिन के लिए, 4 दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 1 दिन के, 3 ही दिन। इससे इसलिए कि तीनों का एक मत था, भगवान राम का एक खुद मत था, वो चाहते थे कि हम 1 दिन प्रार्थना करें, सुग्रीव का भी मत था कि विनती करें, और विभीषण का भी मत था कि हम प्रार्थना के रास्ता मांग करते जाएं। तो एक एक दिन भगवान ने क्या किया, तीनों का मान लिया, सेट है, 1 दिन अपने के लिए, 1 दिन विभीषण के लिए, 1 दिन सुग्रीव के लिए। तो तीनों की राय एक थी तो 3 ही दिन भगवान ने चुना, 3 दिन बैठ करके। हाँ, और 4th दिन किसके लिए आया, लक्ष्मण के लिए। जब 3 दिन बीत गए और समुद्र आया नहीं, निकला नहीं, तब 4th दिन किसके लिए, लक्ष्मण के लिए। जब लक्ष्मण से भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण अब धनुष बाण लाओ, अग्नि बाण लेके आओ, इस दुष्ट को मैं क्या करता हूँ, शिक्षा देता हूँ। कहे भैया तुम पहले ही दिल को बोल दिया था, अगर मेरी बात मान ली गई होती इतनी दिल व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण पकड़ा दिया, उधर से समुद्र था वो क्यों नहीं आ रहा था, समुद्र जानबूझ के नहीं आ रहा था, समुद्र जानते किसलिए नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा था कि समुद्र की उत्तर दिशा की ओर कुल आभीर नाम के वो दुष्ट लोग निवास करते थे, जो समुद्र को परेशान करते थे। ध्रुमकुल्या एक जगह है समुद्र को उत्तरी दिशा की ओर, यानी उससे बहुत परेशान था समुद्र, वही चाहता था कि हम तभी निकलेंगे जब भगवान गुस्सा करेंगे, जब तक के क्रोध नहीं करेंगे मैं निकलूंगा नहीं, प्रकट नहीं होऊंगा, क्या उसे अपना काम निकालना था, क्योंकि समुद्र को मालूम था कि एक बार भगवान बाढ़ चढ़ा लेंगे धनुष पर वो छोड़ते जरूर है, फिर उसको निकाल वो इन्हें की तरक वो मारेंगे जरूर, तो इसलिए उसका पीछे जैसे भगवान ने बाण चढ़ाया है ना, अब पूरे उबाल आ गया, तहलका मच गया, भगवान ने सिर्फ क्रोधाभास किया और उस क्रोधाभास से पूरा समुद्र खोलने लगा, जितने जीव हैं जल जीव हैं ऊपर आने लगे है ना, हड़कंप मच गया, एक तरह से भूकंप जैसा आ गया समुद्र में है ना, इस तरह से तब समुद्र जो है प्रकट हो गया, वो भी ब्राह्मण के रूप में, वो जानता था कि ब्राह्मण को देख करके भगवान राम क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, मारे ही नहीं, ये बात पक्की हो गई, इससे ब्राह्मण का वेश धारण करके समुद्र क्या हो गया, हाथ जो का प्रकट हो गया, भगवान ताने थे लेकिन ब्राह्मण के वेश प्रकट हुआ, छोड़े नहीं, क्योंकि भगवान छोड़ना भी नहीं चाहते थे, वो जानते थे क्रोध हमें उतना ही करना चाहिए जितने से अपना काम निकल जाए, क्रोध को कंट्रोल करने की कला राम से सीखनी चाहिए, जैसे कभी कभी बच्चा गलती करता है तो अगर आपको आंख दिखाने से ही बच्चा ठीक हो जाता है तो आंखें दिखा दीजिए है ना, या डांटने से सुधर जाता है डांट दीजिए, ये थोड़ी की छोटी सी गलती है मारना शुरू कर दो है ना, तो अगर आंख दिखाने से काम चलता है तो आंखें दिखा दो, डांटने से काम, भगवान ने सिर्फ क्रोधावास दिखाया भगवान काम निकल गया, और क्या चाहिए, तब समुद्र प्रकट होते ही बोलना शुरू कर दिया कि किस तरह से नर और नील दो बानर हैं जो कि बड़े बड़े कलाकार हैं, पुल बना दीजिए, हम अपनी तरफ पूरा मदद करेंगे, सब मिल करके पुल का निर्माण कर दीजिए, इससे आपकी महिमा भी बढ़ेगी कि भगवान राम ने देखो पुल बनाया तो इसका महिमा बढ़ेगा, तब भगवान ने कहा ठीक है लेकिन मैं इस बाण का क्या करूं, यही तो चाहता था, कहे कि हे प्रभु अब इसको मेरी ओर न करके उत्तर दिशा, इसका उधर कर लीजिए उत्तर दिशा की ओर, जो हमारे आभीर नाम के जो दुष्ट हमें परेशान करते हैं इनका उनका क्या करिए खत्म कर दिए, हमारा बड़ा कल्याण होगा, तब भगवान उस बाण को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया, ध्रुमकुल्या नाम की जगह पर जहाँ आभीर जात के लोग रहते थे और समुद्र को परेशान कर रहे थे। तो यहां इस प्रसंग से भी दिखना है कि भगवान राम किस तरह से मर्यादा स्थापित कर रहे थे, तो हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, भगवान दो काम कर रहे थे, धीरे धीरे चढ़ जा रहे थे, उसके बाद जब पुल का निर्माण हुआ जानते हैं 5 दिन में पुल तैयार हुआ, सुबह से पुल का निर्माण शुरू हो जाता था शाम तक, उसके बाद सब बानर भालू जितना से आराम करते थे, फिर दूसरे दिन फिर शुरू होता था, तब 5 दिन लगा था, वाल्मीकि जी ने बताया कि 5 दिन में पुल का क्या हुआ निर्माण हो गया, 5 दिन लगा था सर्वजन पुल बनाने का, इतना बड़ा निर्माण। तो भगवान राम उस पार जब जाते हैं तब भी भगवान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उसमें भगवान ने क्या दिखाया, एक बार विभीषण से सुग्रीव से राय लेकर के बोला कि अभी भी रावण अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं इसको क्या करूंगा छोड़ दूंगा। देख आप भगवान नीति कैसे अपना रहे हैं? राजा है ना, राजा की नीति क्या होती है कि एक तरफ से रावण पर शिकंजा कसते चले जा रहे हैं। देखिए राजनीति, देखिए भगवान राम की राजनीति, एक तरफ से शिकंजा कसते चले जा रहे हैं, लंका तक पहुंच गए, पुल बना करके पहुंच गए, कितनी बहादुरी काम है, पुल बना करके रावण को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन एक हाथ से भगवान शांति का प्रस्ताव भी क्या कर रहे हैं, एक रास्ता छोड़े हुए हैं। टेक्निक देखिए, हमें यही चीज सीखना है कि हम बहादुर हैं इसका मतलब सीधा अटैक कर देते, झोंक देते पूरी ताकत। भगवान राम ने कहा कि बहादुर व्यक्ति को ये शोभा नहीं था, आप जोश में रहिए लेकिन होश में भी रहिए। ये भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान राम तुम पहुंच गए और चारों तरफ से बानर ही बानर, काउंटलेस मंकीज, कोई काउंट नहीं किया जा सकता, इतने बानर थे, अनेक से पड़कर थे, लेकिन शिकंजा कसने के बाद जो थी भगवान ने किसको भेजा, अंगद को भेजा। अंगद जा करके बोला कि अगर अभी भी है ना आप हमारे प्रभु के चरणों में शरण में आ जाए, शरणगति हो लें, सीता जी को वापस कर दें, तो तुम फिर राज को हम वापस चले जाएंगे। सचिन वाली बात, यह मर्यादा, इसे कहते मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। तो हमें कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, इसकी शिक्षा पूरे राम के चरित्र में। ईश्वरों को क्या कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या हो सके, भयंकर लड़ाई हुई, राम और रावण का इतना भयानक युद्ध हुआ, भगवान ने रावण को मार भी दिया लेकिन गाली नहीं दी। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात पे गाली गलौज मार पर शुरू हो जाते। सोचने वाले कि भगवान इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लिया है लेकिन बड़े ही मर्यादित ढंग से। जब रावण आया था क्या भव्य रथ था उसका, हमारे भगवान प्रभु जमीन पे थे, खड़ाऊ भी नहीं थी, क्योंकि खड़ाऊ तो भरत जी लेके चले गए थे। चरण पाद का जो भगवान अयोध्या से पहल करके चले थे वो तो भरत जी वापस लेके चले गए थे। सोचने वाली बात, हमारे भगवान अपना खड़ा होके थे और रावण रथ बैठ कर लड़ क्या था। विभीषण को बड़ी दया थी कि रावण रथी बिरथ भगवान, कि हमारे भगवान बिना रथ के हैं, जो रावण है दुष्ट राक्षस ये रथ से है, उनको बड़ी दया गई। भगवान जो शिक्षा दी उस इसी बात पर जब विभीषण पूछा तो भगवान ने कहा कि सत्य ही जिसका रथ है, हमारा रथ क्या है, सत्य, हम सत्य रूपी रथ पे जीता है, ऐसे रथ कभी टिकेंगे नहीं, हमारा रथ क्या है, सत्य। बहुत सुंदर और राम रावण युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र ने क्या किया, अपना दिव्य रथ इंद्र ने भगवान राम के लिए भेजा था, और भगवान राम पर उसी इंद्र के रथ पे उनका जो था माताली नाम था उस सारथी का, उस पे लड़ करके युद्ध हुआ था। युद्ध में ये जो समय हो गया, विभीषण नहीं बताया था कि नाभि में जो है पाण मारना है, कि अमृत का वास था उसके नाभि में, तब भगवान ने 31 बार छोड़ करके और उसको मारा। दो लोग जब मरे, एक जब लक्ष्मण जी ने मारा था किसको, मेघनाथ को, मेघनाथ को जब मारा था तो मेघनाथ जानते किसका नाम लिया था, लक्ष्मण का नाम लिया था। लक्ष्मण का नाम ले करके वो मरा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मारीच मरा था, सोने का मृग बना था ना, जब मारीच को मारा था तो उसने भी किसका नाम लिया था? लक्ष्मण का नाम लिया था। मेघनाथ को जब मारा गया तो भी किसका नाम लिया था? लक्ष्मण का। और जब शरीर गिर गया, शरीर छोड़ गया, तब किसका नाम लिया? राम का। तो राम का नाम लेते हुए उसने क्या किया? शरीर छोड़ा। लक्ष्मण का नाम लेते हुए जमीन पे गिरा था। लक्ष्मण का नाम लेते हुए क्यों गिरा? इसलिए कि लक्ष्मण के अलावा उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसका नाम था इंद्रजीत और लक्ष्मण का नाम है इंद्रजीत, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर क्या कर लिया था? विजय प्राप्त कर लिया था। 14 साल तक उन्होंने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा था, इतना इंद्रिय पर कंट्रोल था। तो इंद्रजीत को कौन मार सकता था? जो इंद्रजीत, वो कौन हुए? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का मेघनाथ का एक रिश्ता भी था, क्योंकि मेघनाथ की जो औरत थी उसका क्या नाम था? सुलोचना। उसको सती थी, बहुत धार्मिक थी, सती सुलोचना, है ना, सुलोचना। और सुलोचना किसकी बेटी थी? शेषनाग की। और शेषनाग जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं। रिश्ता था, हमको सब जानना चाहिए, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हर जगह अपनी मर्यादा विनम्रता को प्रस्तुत किया। यही भगवान जब राजा बने, जिसे राम राज की कल्पना करते हैं, इस क्यों राम का राज चाहते हैं? कि भगवान अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उतना ही प्यार प्रजा राम से करती थी, राम प्रजा करते थे। क्यों? कि भगवान राम के बारे में बताया गया है कि जब अपनी प्रजा के पास जाते थे तो प्रजा से पहले भगवान प्रणाम कर लेते थे। इतनी विनम्रता थी भगवान राम कि प्रजा दिखाई दे, भगवान स्वयं पहले झुक जाते थे। और राम राज में दैहिक, दैविक, दैविक तीन प्रकार की ताप नहीं थी, किसी भी प्रकार कोई कष्ट नहीं था। क्यों? कि सब धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे। अयोध्या अभी भी संसार के लोग, अभी भी संसार सुधर सकता है अगर सब धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें। हमारे प्रभुपाद चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब धीरे धीरे ये दिन आ रहा है ना, अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि इधर मोदी उधर योगी, गुरुआ बस की बड़ी वैल्यू बढ़ गई जो भी देखता है स्वामी स्वामी। अब जय श्री राम तो शुरू हो गया है, पहले तो हरे कृष्ण महामद भी शुरू हो जाएगा। हमारा पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो गीता बांट रहा है, सोच रहे कितनी अच्छी बात है। जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो उनको कई भाषण गीता हमारे गुरु महाराज दिया था, तो सुधार हो रहा है और धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। तो राम यही चाहते हैं कि राजा क्या हो? धार्मिक। अब राजा ही धार्मिक नहीं हुआ, उसकी रुचि गीता के प्रति, रामायण के प्रति, भगवान के प्रति नहीं हो गया तो क्या शिक्षा देगा? सच है कि नहीं सच है? इसीलिए भगवान चाहते थे कि रावण को हटा करके किसको राजा बनाया जाए? विभीषण को बनाया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को हटा करके युधिष्ठिर को राजा बनाया। भगवान भक्त को ही राजा बनाना चाहते हैं कि हमारा भक्त ही क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। तुम्हारे भक्तों को जो है राजा होना चाहिए, तभी तो प्रजा सुधरेगी। तो धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है देश में, कम से कम जय श्री राम का नारा तो लग रहा है ना, जय श्री राम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी अमर हो गए भगवान का नाम लेकर के, श्री राम जय राम जय जय राम। जब हनुमान जी अमर हो सकते हैं तो आप भी भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं। तो प्रभु का नाम हमको लेना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र में तो दोनों नाम हैं, कृष्ण भी और राम भी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपको किसी भूत प्रेत राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। अब आप सोचे कि जो महावीर है हनुमान जी क्या है, ये भगवान क्या है, दास है, सेवक है। इस दास का नाम लेने से अगर भूत भाग सकता है तो उनके स्वामी का मालिक का नाम लेंगे तो भूतों को क्या होगा आप खुद सोचिए, है ना। तो अगर आप हरे कृष्ण हरे राम जो हरे हरे नाम संकीर्तन है इसका नाम लेंगे तो क्या है, ये मालिक का नाम जो सबका स्वामी है ये उनका नाम है, तो भूतों का क्या होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो सारे व्याधाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, भाग जाएंगी, और भगवान की कृपा आपकी बारिश होगी। तो भगवान राम नवमी दिन बड़े उत्साह के साथ हम नवमी मनाना चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु राम, जिस तरह से आपने रावण जो अहंकार और क्रोध का प्रतीक था रावण है ना, तो हमारे हृदय में भी जो क्रोध रूपी अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है इसको आप क्या करिए, भगाइए। हमारे हृदय क्या बनाए, निर्मल बनाइए। तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ रूपी जो रावण बैठा हुआ है इसको क्या करिए, प्रभु भगा दीजिए। अब प्रभु भगाएंगे जब आप उनका नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, अपना एक काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जलन सब भाग जाएगा। और जैसे आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगे, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना आदर होने लगे, समझ लीजिए कि आपका रावण जो अंदर है वो क्या रहे, धीरे धीरे मर रहा है। यही भगवान राम से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है आपकी शक्ति से आपके नाम से इसका क्या होना चाहिए, मरण होना चाहिए। और हम आपके चरण में भगवान आपके चरण में अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। एक कथा बहुत है, इसका एक एक लीला का वर्णन। बोले जय श्री राम, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की।